Stop blaming it on holiday stress. We all know it's that time of year when everything feels drained, both your wallet and you. Well, the real problem is right under you. It's that saggy, old, unsupportive mattress. Well, say hello to Ghostbed. Ghostbed is family-run, consumer-loving, with over 20 years of mattress-making mastery. They've engineered the perfect sleep weapon. Durable, insanely comfortable, and cool enough to keep you chill all night long. Every Ghostbed packs their exclusive ProCore technology, a powerhouse support system that cradles your back, supports, and aligns your spine. Translation? You wake up feeling like a human again. Hot sleeper? Ghostbed's cooling materials fight heat 24/7, so you don't wake up sweaty, even when the thermostat that's cranked up. And here's the kicker. Fast, free shipping in just 2 to 5 days. A 101-night sleep trial and up to a 25-year warranty. That's confidence. Right now, Ghostbed is slashing prices. Up to 50% off compared to other brands. And because you're listening, you score an extra 10% off site-wide. Just use promo code PODCAST at checkout. That's PODCAST for 10% off on top of already insane deals. Upgrade your sleep. Upgrade your life. Ghostbed. The coolest beds in the world.
دنیا میں جتنے بھی دینی اختلافات ہیں وہ سب کے سب کسی عظیم انسان کے پیچھے عقیدت مندوں کا منظم سماج ہے. عظیم انسانوں کی یاد الہی کی خلوت گاہ ہی وقت کے ساتھ زیارت گاہ، خانقاہ، درگاہ، مٹھ اور مندروں کی شکل لے لیتی ہے، جہاں عظیم انسان کے نام پر روزی روٹی سے لے کر عیش و عشرت تک کے سرو سامان اکٹھا کیے جاتے ہیں. گدیاں عظیم انسان کے بعد بنتی ہیں، گدیوں سے کوئی عظیم انسان نہیں بنتا. لہذا دین ہمیشہ سے ہی بدی ہی دیدار کرنے والے عظیم انسان کے دائرے کی چیز رہا ہے. گیتا ایسے ہی غیر اختلافی عظیم انسان جوگ کے مالک شری کرشن کا کلام ہے، جس کی قدیمی سچائیوں سے آپ کا سامنا کرا رہا ہے یتھارتھ گیتا کا یہ سی ڈی نشریہ.
اوم شری پرماتمنے نمہ. یتھارتھ گیتا، حقیقی گیتا، شری مد بھگوت گیتا. اتھا एकादशोध्याय, ग्यारहवां बाब. गुज़िश्ता बाब में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने अपनी खास खास शौकतों का इख्तिसार के साथ बयान किया, लेकिन अर्जुन को लगा कि उसने तफसील से सुन लिया है. उसने कहा कि आपकी बातें सुनने से मेरी सारी फरीफ्तगी खत्म हो गई, लेकिन आपने जो कहा उसे रूबरू देखना चाहता हूं. सुनने और देखने में मगरिब और मशरिक का फर्क है. चलकर देखने की हकीकत कुछ और ही होती है. अर्जुन ने उस शक्ल को देखा तो कांपने लगा, माफी की इल्तिजा करने लगा. क्या आलिम खौफजदा होता है? उसे कोई तजस्सुस रह जाता है? नहीं, अकली सतह की जानकारी हमेशा नासाफ रहती है. हां, वो हकीकी इल्म के लिए तरगीब जरूर देता है. लिहाजा अर्जुन ने गुजारिश की के अर्जुन उवाच.
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतं यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम.
बंदा परवर, मुझ पर मेहरबान होकर के जो आपके वसीले से राज भरे तसव्वुफ में داخلہ دلانے والی نصیحتیں دی گئیں، اس سے میری یہ جہالت ختم ہو گئی، میں عالم ہو گیا.
بھواپیو ہی بھوتانا شروتو وسترشو میا त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्।
क्योंकि आए चश्मे कमल, मैंने मादियात की तखलीक और कयामत यानी प्रलय आपसे तफसील के साथ सुना है और आपका लाफानी असर भी सुना है।
एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं ऐश्वरं पुरुषोत्तम।
ऐ परवरदिगार, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक वैसा ही है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ उसे सुना है। लिहाजा ऐ आला तरीन इंसान, शौकतों से मुजयन उस हकीकी शक्ल को मैं जाहिरी तौर पर देखना चाहता हूं।
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्।
ऐ मालिक, मेरे जरिए से आपकी वो शक्ल देखी जानी मुमकिन है। अगर आप ऐसा मानते हो तो ऐ जोग के मालिक, आप अपनी लाफानी हकीकी शक्ल का मुझे दीदार कराइए। इस पर जोग के मालिक ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, क्योंकि वो पहले भी जगह जगह पर कह आए हैं, तू मेरा लाशरीक बंदा और महबूब दोस्त है। लिहाजा उन्होंने बड़ी खुशी के साथ अपनी हकीकी शक्ल का दीदार कराया। श्री भगवान उवाचा।
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च।
पार्थ, मेरी सैकड़ों और हजारों मुख्तलिफ किस्म की और मुख्तलिफ रंग यानी वर्ण वो सूरत वाली मावराई वाली हकीकी शक्ल का दीदार कर।
पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत।
ऐ भारत, अदिति की 12 औलाद, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों और 49 मरुद्गणों को देख, और दूसरी बहुत से पहले तुम्हारे जरिए कभी ना देखी गई हैरत अंगेज शक्लों को देख।
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि।
अर्जुन, अब मेरे इस जिस्म में एक ही जगह पर मौजूद हुए मुतहर्रिक वो साकिन के साथ तमाम जहां को देख और दूसरी चीजें भी, जो कुछ देखना चाहता है वो देख। इस तरह 3 श्लोकों तक श्री कृष्ण मुसलसल दिखाते चले गए, लेकिन अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं पड़ा, वो आंखें मलता रह गया। लिहाजा ऐसा दिखाते हुए बंदा नवाज यकबारगी रुक जाते हैं और फरमाते हैं,
न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्।
अर्जुन, तू मुझे अपनी निगाहों के जरिए यानी अकली नजर से देखने में कादिर नहीं है, लिहाजा मैं तुझे मावराई यानी नादिर नजर अता करता हूं, जिससे तू मेरे असर और जोग की ताकत को देख। इधर जोग के मालिक श्री कृष्ण के रहम करम से अर्जुन को वही नजर मिल गई, उसने देखा, और उधर जोग के मालिक व्यास के रहम करम से वही नजर संजय को मिली थी। जो कुछ अर्जुन ने देखा हूबहू वही संजय ने भी देखा, और उसकी बरकत से अपने को फलाह का हिस्सेदार बनाया। जाहिर है कि श्री कृष्ण एक जोगी के हमसर हैं। संजय उवाच।
महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्।
संजय बोला, ऐ शाह, अजीम जोग के मालिक श्री कृष्ण यानी हरि ने इस तरह की बातें बताने के बाद अर्जुन को अपनी आला शौकतों से मुजयन मावराई हकीकी शक्ल दिखाई, जो खुद जोगी है और दूसरों को भी जोग अता करने की जिसमें सलाहियत हो। जो जोग का मालिक हो उसे जोग का मालिक कहते हैं। इस तरह सब कुछ सल्ब यानी हरण करने वाला हरि है। अगर सिर्फ दुखों को सल्ब किया और सुख छोड़ दिया तो दुख आएगा, लिहाजा सारे गुनाहों के खात्मे के साथ सब कुछ का सल्ब करके अपनी हकीकी शक्ल दिखाने में जो कादिर है वो हरि है। उन्होंने अर्जुन को अपनी मावराई हकीकी शक्ल दिखाई, सामने तो खड़े ही थे।
नयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्।
मुख्तलिफ मुंह और आंखों से मुजयन, मुख्तलिफ हैरत अंगेज शबीह वाले, मुख्तलिफ नादिर जेवरात से आरास्ता और मुख्तलिफ मावराई असलह को हाथ से उठाए, और
दिव्य माल्यांबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम।
नादिर माला और लिबासों को पहने हुए, लतीफ खुशबू को लगाए, हर तरह हैरत अंगेजियों से मुजयन, लामहदूद अजीमुशान शक्ल वाले आला माबूद को अर्जुन ने नजर मिलने पर देखा।
दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सास्या भासस्तस्य महात्मनः।
ला इल्मी की मिसाल धृतराष्ट्र, एहतियात की तमसील संजय, जैसा पहले बयान किया गया है। संजय बोला, ऐ शाह, आसमान में एक साथ हजारों तुलु आफताब से जितनी रोशनी होती है, वो भी बशक्ल आलिम इस मर्द कामिल के नूर के मुकाबले शायद ही हो। यहां श्री कृष्ण मर्द कामिल ही हैं जो के मालिक थे।
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा।
पांडु के पिसर अर्जुन ने, यानी नेकी ही पांडु है, नेकी ही इश्क को जन्म देती है। उस वक्त मुख्तलिफ किस्मों से बटी हुई सारी दुनिया को उस आला रूह के जिस्म में एक जगह मौजूद देखा।
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत।
उसके बाद हैरत जदा मसरूर रोमों वाला वो अर्जुन आला रूह को सर झुकाकर आदाब करते हुए, यानी पहले भी आदाब बजाता था लेकिन असर देख लेने पर बा अदब बा एहतराम आदाब बजाकर दस्त बदस्ता होकर बोला। यहां अर्जुन ने कल्प से आदाब अर्ज किया और कहा, अर्जुन उवाच।
पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघां ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश सर्वानुरगांश दिव्यां।
ऐ रूहे पाक, आपके जिस्म में मैं तमाम मलाइक को और मुख्तलिफ जानदारों के गिरोहों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को, वली हजरात को और नादिर सांपों को देखता हूं। ये रूबरू दीदार था, सिर्फ तकायुल नहीं। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब जोग के मालिक यानी आला मकाम पर फाइज अजीम इंसान दिल से ऐसी नजर अता करें, ये रियाजत से ही मुमकिन है।
अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप।
मालिके दुनिया, मैं आपको मुख्तलिफ हाथ, पेट, मुंह और आंखों से मुजयन वो हर जानिब से लाम उतना ही शक्लों वाला देखता हूं। ऐ मालिके जहां, ना मैं आपकी इब्तिदा को, ना वस्त को, ना इंतहा को ही देखता हूं, यानी आपकी इब्तिदा वस्त और इंतहा का फैसला नहीं कर पा रहा हूं।
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्।
मैं आपको ताज, गुर्ज और चरक से मुजयन, हर जानिब से मुनव्वर पुरनूर शक्ल, दहकती हुई आग और सूरज की तरह देखने में बेहद मुश्किल यानी दिक्कत के साथ देखा जाने वाला और हर जानिब से अक्ल वगैरह के दायरे से बाहर लामहदूद देखता हूं। इस तरह तमाम हवा से पूरी तरह वक्फ होकर जोग के मालिक श्री कृष्ण को इस अजीमुश्शान शक्ल में देखकर अर्जुन उनकी हम्द सराई करने लगा।
त्वमक्षरम् परमं वेदितव्यम्, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे।
बंदा परवर, आप जानने के लायक आला लाफानी यानी फना ना होने वाले माबूद हैं। आप इस दुनिया की सबसे आला पनाह गाह हैं। आप दायमी दीन के मुहाफिज हैं और आप लाफानी अबदी इंसान हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। रूह की शक्ल क्या है? दायमी है, अबदी, गैर मरई है, लाफानी है। यहां श्री कृष्ण की क्या शक्ल है? वही दायमी, अबदी, गैर मरई, लाफानी यानी हुसूल के बाद अजीम इंसान भी उसी खुद शनासी की हालत में कायम होता है। तभी तो माबूद और रूह एक दूसरे के हम वजन है।
अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम्, अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम्, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम्, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्।
ऐ परवरदिगार, मैं आपको इब्तिदा वस्त और इंतहा से मुबर्रा लामहदूद कुव्वत से मुजय्यन बेशुमार हाथों वाला यानी पहले हजारों थे अब बेशुमार हो गए, चांद और सूरज जैसी आंखों वाला यानी तब तो माबूद यक चश्म हो गए, एक आंख चांद की तरह कमजोर रोशनी वाली और दूसरी सूरज की तरह जलाल वाली, ऐसा कुछ नहीं है। सूरज की तरह रोशनी अता करने वाली और चांद की तरह ठंडक पहुंचाने वाली कुबी माबूद में है। चांद और सूरज महज अलामत हैं, यानी चांद और सूरज जैसी निगाह वाले और दहकती हुई आग जैसे मुंह वाला, और अपने जाहो जलाल से इस दुनिया को तपाते हुए देखता हूं।
द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा, दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं, लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्।
ऐ अजीम रूह, आसमान और जमीन के बीच की पूरी कला और सारी समतें वाहिद आपसे ही लबरेज हैं। आपकी इस मावराई खौफनाक शक्ल को देखकर तीनों अवालिम बेहद परेशान हो रहे हैं।
अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति, केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृणन्ति, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः।
वो मलाइक के गिरोह में ही दाखिल हो रहे हैं और कई एक खौफजदा होकर दस्त बस्त आपकी हम्द सराई कर रहे हैं। वलियों और कामिलों के झुंड हम्द सताइश यानी खैर हो ऐसा कहते हुए दुआओं के जरिए आपकी हम्द सना कर रहे हैं।
रुद्रादित्यावसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश गंधर्वयक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे।
रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, वायुदेव, अग्नि, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के गिरोह सभी हैरत अंगेज नजर से आपको देख रहे हैं, यानी देखते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो नजर ही नहीं है। श्री कृष्ण ने पहले ही बताया था कि शैतानी खसाइल वाले लोग मुझे कमतर कहकर मुखातिब करते हैं, आम इंसान जैसा मानते हैं, जबकि मैं आला तरीन एहसास में आला माबूद की शक्ल में कायम हूं। अगरचे हूं इंसानी जिस्म की बुनियाद वाला, उसी की तफसील यहां है कि वो ताज्जुब की नजर से देख रहे हैं, हकीकी तौर पर समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं देखते हैं।
रूपम महत्ते बहुवत्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम।
बाजुए अजीम, यानी श्री कृष्ण बाजुए अजीम हैं और अर्जुन भी। दुनिया से मावरा अजीम इख्तदार में जिसका हल्के कार हो वो बाजुए अजीम है। श्री कृष्ण अजमत के हल्के में मुकम्मल हैं, इंतहाई हद में हैं। अर्जुन उसी की इब्तदाई दौर में है, रास्ते में है, मंजिल रास्ते का दूसरा सिरा ही तो है। बाजुए अजीम जोग के मालिक, आपके बहुत मुंह और आंखों वाली बेशुमार हाथ, जंघा और पैरों वाली, बहुत सारे पेट और खौफनाक दाढ़ों वाली अजीम उशान शक्ल को देखकर सारे अवालिम बेचैन हो रहे हैं और मैं भी बेकरार हो रहा हूं। अब श्री कृष्ण की अजमत को देखकर अर्जुन को कुछ डर लग रहा है कि वो इतने अजीम हैं।
नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो।
सारी दुनिया में सब जगह जौहर यानी अणु की शक्ल में मौजूद ऐ विष्णु, आसमान की बुलंदियों को छूती हुई रोशनी का मीनार, मुख्तलिफ शक्लों से मुजयन, मुंह फैलाए हुए और रोशन जदा बड़ी आंखों वाले, आपको देखकर खास तौर से खौफ जदा बातिन वाला मैं सब्र और मन को तसल्ली देने वाले सुकून को नहीं हासिल कर पा रहा हूं।
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास।
आपके दहशतज़दा ढाणों वाले आतिशे अजल यानी कालाग्नि, अजल के लिए भी आग है रूहे मुतलक की मानिन दहकते हुए मुंह को देखकर मैं संतों को नहीं जान पा रहा हूं। चारों तरफ रोशनी देखकर संतों का पता नहीं चल रहा है। आपकी ये शक्ल देखते हुए मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है। ऐ शाहे मलाइक, ऐ बंदा नवाज, आप खुश हों।
अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यै।
वो सभी धृतराष्ट्र के औलाद शाहों के गिरोहों के साथ आप में दाखिल हो रहे हैं, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, वो कर्ण जिससे अर्जुन बहुत खौफजदा था, वो कर्ण और हमारी तरफ के भी खास सिपे सालारों के साथ सब के सब।
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति तंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगै।
बड़े रफ्तार के साथ आपके खौफनाक ढाढ़ों वाले दहशत जदा तमाम दहानों में दाखिल हो रहे हैं, और इनमें से कितने ही रौंदे हुए आपके दांतों के दरमियान फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो किस रफ्तार के साथ दाखिल हो रहे हैं, अब उनकी रफ्तार देखें।
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति।
जैसे बहुत से नदियों के पानी की रवानी यानी अपने में खौफनाक होते हुए भी समंदर की तरफ दौड़ती है, समंदर में दाखिल होती है, ठीक उसी तरह वो बहादुर इंसानों के गिरोह आपके जलते हुए तमाम दहानों में दाखिल हो रहे हैं। यानी वो खुद में बहादुर तो हैं, लेकिन आप समंदर के मानिंद हैं। आपके सामने उनकी ताकत बेहद कम है। वो किस वास्ते और किस तरह दाखिल हो रहे हैं, इसके लिए नजीर पेश है।
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा।
जिस तरह परवाने खत्म होने के लिए ही जलती हुई आग में बेहद रफ्तार से दाखिल होते हैं, वैसे ही ये सारे जानदार भी अपनी तबाही के लिए आपके दहन में बहुत ज्यादा बड़ी हुई रफ्तार से दाखिल हो रहे हैं।
ले लिह से ग्रसमान समन्ता लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भि तेजो भिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु।
आप उन सारे अवालिम को ताबिंदा दहानों के जरिए हर जानिब से चाटते हुए निगल रहे हैं, उनको चख रहे हैं। अय आला रूह, आपका शदीद नूर सारे जहान को अपने जलाल से तारी करके दहक रहा है। मतलब यह है कि जब पहले दुनियावी दौलत आला उनसुर में तहलील हो जाती है, उसके बाद रूहानी दौलत का कोई मतलब नहीं रह जाता, लिहाजा वो भी उसी आला शक्ल में तहलील हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि कौरों के जानिबदार और उसके बाद उसके अपने जानिबदार के जंगजू श्री कृष्ण के दहन में तहलील होते जा रहे हैं। उसने सवाल किया,
आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्।
मुझे बताइए कि खौफनाक शक्ल वाले आप कौन हैं? ऐ रब्बुल अरबाब, आपको आदाब है, आप खुश हों। अबदी शक्ल वाले, मैं आपको अच्छी तरह जानना चाहता हूं, यानी जैसे आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी खसलत यानी आपकी हरकतों को नहीं समझ पा रहा हूं। इस पर जोग के मालिक श्री कृष्ण बोले, श्री भगवान वाचा,
कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा।
अर्जुन, मैं सारे जहां का खात्मा करने वाला बड़ा हुआ काल याने मौत हूं, और उस वक्त उन अवालिम को खत्म करने पर आमादा हूं। मुखालिफीन की फौज में मौजूद जितने जंगजू हैं वो सब तेरे बगैर भी नहीं रहेंगे, वो जिंदा नहीं बचेंगे, इस वास्ते आमादा हुआ हूं।
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्।
इस वास्ते अर्जुन, तू जंग के लिए खड़ा हो, नेक नामी हासिल कर, दुश्मनों पर फतेह हासिल कर, एक खुशहाल और बाहैसियत इख्तदार का लुत्फ उठा। ये सारे जंगजू मेरे जरिए पहले ही मारे जा चुके हैं। सव्य साचिन, अर्जुन तू महज वसीला बन। आम तौर से श्री कृष्ण ने हर जगह कहा है कि वो माबूद ना कुछ खुद करता है, ना कराता है, ना हालात ही पैदा करता है। फरिश्तगी अक्ल की वजह से ही लोग कहते हैं कि माबूद कराता है, यानी यहां वो खुद ताल ठोक कर खड़े हो जाते हैं कि अर्जुन सब कुछ करने वाला तो मैं हूं, मेरे जरिए ये पहले से ही सारे मारे जा चुके हैं, तू बस खड़ा भर हो जा, नेक नामी हासिल कर ले। ऐसा इस वास्ते है कि सो केवल भगत न हित लागी, अर्जुन उसी मकाम को हासिल कर चुका था कि भगवान खुद ताल ठोक कर खड़े हो गए। उनसियत ही अर्जुन है, सच्चे आशिक के लिए माबूद हमेशा खड़े हैं, उसी के कारकुन हैं, रथबान बन जाते हैं। यहां गीता में तीसरी बार इख्तदार का मौजू आया। पहले अर्जुन जंग करना नहीं चाहता था, उसने कहा कि जमीन के मालो जर से बार आवर बेखतर हुकूमत और मलाइक के मालिकान या तीनों अवालिम की इख्तदार में भी मैं उस तरीके को नहीं देखता जो हवास को सुखाने वाले मेरे इस गम को दूर कर सकें। जब बेकरारी बनी ही रहेगी तो हमें नहीं चाहिए। जोग के मालिक ने कहा, इस जंग में शिकस्त खाओगे तो देवता का मकाम और जीतने पर हुजूर आला का मर्तबा मिलेगा। और यहां ग्यारहवें बाब में कहते हैं कि ये दुश्मन मेरे जरिए मारे जा चुके हैं, तू महज वसीला भर बन जा, नेक नामी को हासिल कर और एक खुशहाल हुकूमत का लुत्फ उठा। फिर वही बात जिस बात से अर्जुन चौंकता है, जिसमें वो अपने गम को खत्म होता हुआ नहीं देखता। क्या श्री कृष्ण फिर वही इख्तदार अता करेंगे? नहीं, दर हकीकत उयूब का कातमा, रूह मुतलक की शक्ल की हालत ही हकीकी खुशहाली है, जो हमेशा कायम रहने वाली दौलत है, जिसका कभी खात्मा नहीं होता, शाही जोग का समरा है।
च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्।
इन द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और बहुत से मेरे जरिए मारे गए जंगजू बहादुरों को तू मार, खौफ मत कर, जंग में दुश्मनों को तू यकीनी तौर पर जीतेगा, इस वास्ते जंग कर। यहां भी जोग के मालिक ने कहा कि वो मेरे जरिए मारे जा चुके हैं, इन मरे हुओं को तू मार, जाहिर किया कि मैं कारकुन हूं। जबकि पांचवें बाप के 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में उन्होंने कहा था माबूद कुछ नहीं करते हैं, 18वें बाब में वो कहते हैं मुबारक या ना मुबारक, हर एक काम के होने में 5 वसीले हैं, जगे यानी अधिष्ठान, कारकुन यानी कर्ता, वसीला यानी करण, कोशिश यानी चेष्टा और किस्मत यानी दैव, जो कहते हैं रौनक अफरोज माबूद करते हैं, वो ना समझ हैं, हकीकत को नहीं जानते, यानी भगवान नहीं करते, ऐसा तजाद यानी विरोधाभास क्यों? दर हकीकत दुनिया और इस आला मकाम पर फाइज इंसान के दरमियान एक हद्द लकीर है। जब तक दुनियावी अनासिर का दबाव ज्यादा रहता है, तब तक फितरत तरगीब देती है, और जब रियाजत कश उसके ऊपर उठ जाता है, भगवान मतलूबा या मुर्शिद के हलके कार में दाखिला ले लेता है। उसके बाद मुर्शिदे मतलूबा यानी याद रहे मुहर्रिक की जगह मुर्शिद, रूह रूह मुतलक, मतलूब माबूद एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। कुछ भी कहीं कहता भगवान ही है, दिल से रतबान हो जाता है, रूह से बेदार होकर उस अकीदतमंद आशिक रियाजत कश की खुद रहनुमाई करने लग जाता है। काबिले एहतराम महाराज जी कहते थे हो जिस माबूद की हमें चाह है, जिस सतह पर हम खड़े हैं, उस सतह पर खुद उतरकर जब तक रूह से बेदार नहीं हो जाता, तब तक सही तौर पर रियाजत की शुरुआत नहीं हो पाती। उसके बाद जो कुछ रियाजत कश को कामयाबी मिलती है, वो उसकी नजर इनायत है। रियाजत कश तो महज एक वसीला बनकर उनके इशारे और हुक्म पर चलता भर रहता है। रियाजत कश की कामयाबी उनकी मेहरबानी है। ऐसे अकीदतमंद के लिए माबूद अपनी नजर से देखता है, दिखाता है और अपने मकाम तक पहुंचाता है। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे जरिए मारे गए इन दुश्मनों को मार, तय है कि तुम्हें फतेह हासिल होगी, मैं जो खड़ा हूं। संजय उवाचा।
श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयैवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य।
संजय बोला, यानी जो कुछ अर्जुन ने देखा ठीक वैसा ही संजय ने देखा है। जहालत से मुहित मन ही नाबीना धृतराष्ट्र है, लेकिन ऐसा मन भी एहतियात के जरिए अच्छी तरह देखता सुनता और समझता है। श्री कृष्ण की इन मजकूरा बाला बातों को सुनकर ताजदार अर्जुन खौफजदा होकर दस्त बस्ता आदाब बजा, फिर श्री कृष्ण से इस तरह लर्जीदा आवाज ही में बोला, अर्जुन उवाचा।
स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्ररिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा।
ऐ आलिमुल गैब, मालिके नफ्स, ये मुनासिब है कि आपकी शोहरत से दुनिया खुश होती है और उनसियत को हासिल करती है। आपकी ही अजमत से डरे हुए देव इधर उधर संतों की जानिब भागते हैं और सारे कामिलों के गिरोह आपकी अजमत को देखकर आदाब बजाते हैं।
कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्।
ऐ अजीम रूह खालिक यानी ब्रह्मा के भी अजली खालिक और अजीम तरीन, आपका वो कैसे आदाब न बजाएं, क्योंकि अय लाम उतना ही। अय रब्बुल अरबाब, अय मालिकुद दुनिया, हक व बातिल और उनसे भी मावरा लाफानी यानी दायमी हकीकी शक्ल आप ही हैं। अर्जुन ने लाफानी हकीकी शक्ल का रूबरू दीदार किया था, महज अकली सतह पर तकय्युल करने या मान लेने की बिना पर ही कोई ऐसी हालत नहीं मिलती जो लाफानी हो। अर्जुन का रूबरू दीदार उसका बातिनी एहसास है। उसने खाक सारी के साथ कहा,
त्वमादि देव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप।
आप अबदि देवता और दायमी इंसान हैं। आप इस दुनिया की आला पनाह और जानने वाले काबिले इल्म हैं और आला मकाम हैं। ऐ लामहदूद शक्ल वाले, आपसे ये सारी दुनिया जलवगर है, आप सब जगह मौजूद हैं।
वायुर्यमोग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते।
आप ही हवा, मलकुल मौत यानी यमराज, आग, पानी, चांद और कल्क के मालिक ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिदर हैं। आपको हजारों बार आदाब है, इसके बावजूद भी बारहा आदाब है। बेहद अकीदत और बंदगी की बिना पर बादब सर झुकाते हुए अर्जुन को आसूदगी नहीं हो रही है। वो कहता है,
मैं नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः।
ऐ बेहद कादिरे अजीम कादिरे मुतलक, आपको सामने से और पीछे से भी आदाब हो। ऐ रूह आलम, आपको हर जानिब से आदाब हो, क्योंकि ऐ बे इंतहा जफाकश, आप हर तरह से दुनिया को तारी किए हुए हैं। लिहाजा आप ही हर शक्ल में और हर जगह मौजूद हैं। इस तरह बारहा आदाब करके खौफ जदा अर्जुन अपनी गलतियों के लिए मुआफी की गुजारिश करता है।
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि।
आपकी इन अजमतों को न जानते हुए आपको साथी दोस्त मानकर मेरे जरिए मोहब्बत या गफलत से भी ऐ श्री कृष्ण ऐ यादव ऐ दोस्त इस तरह जो कुछ भी मदहोशी में कहा गया है और
यच्चावहा सार्थमसत्कृतोसि विहार शय्यासन भोजनीषु एकोथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामयेत्वामहमप्रमेयम्।
ऐ मुस्तखिल मिजाज, जो आप हंसी मजाक में तफरीह सोने बैठने और खाने पीने वगैरह मामलों में तन्हा या उन लोगों के सामने भी बेइज्जत किए गए हैं जो सारे गुनाह बईद अल खयास असर वाले, आपसे मैं माफी का तलबगार हूं, किस तरह माफ करें।
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्य प्रतिम प्रभाव।
आप इस मुतहर्रिक वो साकिन दुनिया के पिदर मुर्शिद से भी बरतर मुर्शिद और बे इंतहा काबिले एहतराम है, जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। ऐसे बेमिसाल असर वाले आपके बराबर तीनों अवालिम में दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे बड़ा कैसे होगा। आपके साथी भी नहीं, क्योंकि साथी तो हम वजन होता है।
तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीद्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्।
आप मुतहर्रिक व साकिन के पिदर हैं, लिहाजा मैं अपने जिस्म को अच्छी तरह आपके कदमों में रखकर इजहार अकीदत यानी आदाब करके काबिले हम्द सना आप आला रूह को खुश करने के लिए इल्तिजा करता हूं। ऐ बंदा नवाज, पितर जैसे पितर के, दोस्त जैसे दोस्त के और शौहर जैसे महबूबा बीवी के गुनाहों को माफ करता है, वैसे ही आप भी मेरे गुनाहों को माफ करने के काबिल हैं। गुनाह क्या था हमने कभी ऐ यादव ऐ दोस्त ऐ कृष्ण कहा था, समाज के दरमियान या तन्हाई में कहा था, खाने के वक्त या सोने के वक्त कहा था? क्या कृष्ण कहना कसूर था? काले थे ही तो गोरे कैसे कहे जाते? यादव कहना भी खता नहीं थी, क्योंकि यादव खानदान में तो पैदाइश हुई थी। दोस्त कहना भी कसूर नहीं था, क्योंकि खुद श्री कृष्ण भी अपने को अर्जुन का दोस्त मानते थे। जब कृष्ण कहना कसूर ही है, एक बार कृष्ण कहने के लिए अर्जुन तमाम मर्तबा गिड़गिड़ाकर मुआफी की इल्तिजा कर रहा है, तो विर्ध किसका करें, नाम कौन सा लें? दर हकीकत गौर और फिक्र का जो तरीका खुद जोग के मालिक श्री कृष्ण ने बताया है, वैसा ही आप करें। उन्होंने पहले बताया, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनु स्मरण। अर्जुन, ओम बस इतना ही लाफाने रब का मजहर है, इसका तू विर्द कर और तसव्वुर मेरा रख। क्योंकि इस आला एहसास के साथ निस्बत मिल जाने के बाद उस अजीम इंसान का भी यही नाम है जो उस गैर मरई का मजहर है। जलवा देखने पर अर्जुन ने पाया कि ये ना तो काले हैं ना गोरे, ना दोस्त यानी सखा हैं ना यादव, ये तो लाफानी रब के मकाम को पहुंचे हुए मर्द कामिल हैं। पूरी गीता में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने 5 बार ओम के लफ्ज के विर्द पर जोर दिया। अब अगर आपको विर्द करना है तो कृष्ण कृष्ण ना कहकर ओम का ही विर्द करें। आम तौर से अकीदतमंद लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, कोई ओम का विर्द करने की हक की मुनासिबत और गैर मुनासिबत के जिक्र से खौफ जदा है तो कोई फकीरों की दुहाई देता है, या कोई श्री कृष्ण ही नहीं, इनसे पहले राधा और गोपियों के नाम का भी उनको जल्द खुश करने की चाहत में विर्द करता है। इंसान अकीदतमंद है, लिहाजा उसका ऐसा विर्द करना महज जज्बातियत है। अगर आप सचमुच अकीदतमंद हैं तो उनके हुक्म की तामील करें। वो गैर मरई में कायम होते हुए भी आज आपके सामने नहीं है, लेकिन उनका कलाम उनके सामने है। उनके हुक्म की तामील करें, वरना आप ही बताइए कि गीता में आपकी क्या जगह है। हां इतना जरूर है कि अध्येष्यते च य इमं श्रद्धावानं सूयश्च शृणुयादपि यो नरः। जो मुताला करता है, सुनता है, वो इल्म और यज्ञ को समझ लेता है, मुबारक अवालिम को हासिल कर लेता है। लिहाजा मुताला जरूर करें। जान और रिया के गौर फिक्र में कृष्ण नाम का सिलसिला पकड़ में नहीं आता। बहुत से लोग कोरी जज्बातियत के जेर असर सिर्फ राधे राधे कहने लगे हैं। इमरोज और फरदा हुक्काम से काम ना होने पर उनके खास रिश्तेदार से, दोस्त या बीवी से सिफारिश लगाकर काम चला लेने का रिवाज है। लोग सोचते हैं मुमकिन है मामूत के घर में भी ऐसा चलता होगा, लिहाजा उन्होंने कृष्ण कृष्ण कहना बंद करके राधे राधे कहना शुरू कर दिया। वो कहते हैं राधे राधे श्याम मिला दें। राधा एक बार बिछड़ी तो खुद श्याम से नहीं मिल पाई, वो आपको कैसे मिला दे? लिहाजा किसी दूसरे का कहना ना मानकर श्री कृष्ण के हुक्म को आप लफ्ज ब लफ्ज माने, ओम का विर्द करें। हां यहां तक मुनासिब है कि राधा हमारे लिए नस्बुल ऐन है, उतनी ही लगन से हमें भी लगना चाहिए। अगर हासिल करना है तो राधा की तरह हिजरजदा बिरही बनना है। आगे भी अर्जुन ने कृष्ण कहा, कृष्ण उनका मुरव्विजा नाम था, ऐसे कई नाम थे जैसे गोपाल, बहुत से रियाजत कश गुरु गुरु या गुरु का मुरव्विजा नाम जज्बाती तौर पर विर्द करना चाहते हैं, लेकिन हुसूल के बाद हर अजीम इंसान का वही नाम है जिस गैर मरई मकाम पर वो मौजूद है। बहुत से मुकल्लिद सवाल करते हैं, मुर्शिद कामिल جب تصور آپ کا کرتے ہیں تو قدیمی نام اوم وغیرہ کا ورد کیوں کریں؟ گرو گرو یا کرشن کرشن کیوں نہ کہیں؟ لیکن یہاں جوگ کے مالک نے صاف کیا کہ غیر مرئی حقیقی شکل میں تحلیل ہونے کے ساتھ عظیم انسان کا بھی وہی نام ہے جس میں وہ قائم ہے۔ کرشن تقاطب تھا، ورد کرنے کا نام نہیں۔ جوگ کے مالک سری کرشن سے ارجن نے اپنے خطاؤں کے لیے معافی کی التجا کی، انہیں فطری شکل میں لوٹ آنے کی التجا کی۔ شری کرشن مان گئے، عام جیسے ہو گئے، یعنی اسے معاف بھی کر دیا۔ اس نے گزارش کی،
अदृष्ट पूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनोमि तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास।
अभी तक अर्जुन के सामने جوگ کے مالک عالمی شکل میں ہیں، لہذا وہ کہتا ہے کہ میں اس سے پہلے نہ دیکھی ہوئی آپ کی اس حیرت انگیز شکل کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں، اور میرا من خوف سے بے انتہا بے قرار بھی ہو رہا ہے۔ پہلے تو دوست سمجھتا تھا، علم تیر اندازی میں شاید اپنے کو کچھ بہتر ہی پاتا تھا، لیکن اب اثر دیکھ کر من خوف زدہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ باب میں اس اثر کو سن کر وہ اپنے کو عالم مانتا تھا، عالم کو کہیں خوف نہیں ہوتا ہے۔ در حقیقت روبرو دیدار کا اثر ہی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ سب کو سن اور مان لینے کے بعد بھی سب کچھ چل کر جاننا باقی ہی رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے پہلے نہ دیکھی ہوئی آپ کی اس شکل کو دیکھ کر میں خوش ہو رہا ہوں، میرا من خوف سے بے قرار ہو رہا ہے، لہذا اے بندہ نواز آپ خوش ہوں۔ اے رب الارباب، اے مالک دنیا، آپ اپنی اس شکل کا ہی مجھے دیدار کرائیے۔ کون سی شکل؟
کریٹنم گدنم چکرہستم इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते।
मैं आपको वैसे ही यानी पहले की तरह सर पर ताज पहने हुए, हाथ में गुर्ज اور چرخ لیے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، لہذا اے شکل عالم، اے ہزاروں بازوؤں والے، آپ اپنی اسی چار بازوؤں والی شکل میں ہو جائیے۔ اس نے کون سی شکل دیکھنی چاہیے؟ چار بازوؤں والی شکل اب دیکھنا ہے۔ چار بازوؤں والی شکل ہے کیا؟ شری بھگوان اواچا،
प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगा तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्।
इस तरह अर्जुन की इल्तिजा सुनकर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन میں نے مہربانی کے ساتھ اپنے جوگ کے طاقت کے زیر اثر اپنی اعلی آب و تاب والی سب کی ابتدا اور لامحدود عالمی شکل تجھے دکھائی ہے، جسے تیرے سوا دوسرے کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔
نہ وید یجادھیانیر نہ دانیر نا चक्रियार्न तपो भीग्रै एवं रूप शक्य अहम त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर।
अर्जुन, इस इंसानों की दुनिया में मैं इस तरह आलमी शक्ल वाला न वेद से, न यज्ञ से, न मुताले से, न अमल से, न शदीद रियाजत से और न तेरे सिवा किसी दूसरे से देखा जाने को मुमकिन हूं, यानी तेरे सिवा ये शक्ल दूसरा कोई देख नहीं सकता। तब तो गीता आपके लिए बेकार है। दीदारे माबूद की भी सलाहियतें महज अर्जुन तक महदूद रह गईं, जबकि पहले बता आए हैं कि अर्जुन उनसियत, दहशत और गुस्से से खाली लाशरीक मन से मेरी पनाह में आए हुए बहुत से लोग इल्म वाले रियाजत से पाक होकर जाहिरी तौर पर मेरी हकीकी शक्ल को हासिल कर चुके हैं। यहां कहते हैं तेरे सिवा ना कोई देख सका है और ना मुस्तकबिल में कोई देख सकेगा, लिहाजा अर्जुन कौन है? क्या कोई जिर्म वाला है? क्या जिस्म वाला है? नहीं, दर हकीकत इश्क ही अर्जुन है। इश्क से खाली इंसान न कभी देख सका है और न मुस्तकबिल में कभी देख सकेगा। पूरी यकसुई के साथ वाहिद माबूद के मुताबिक लगाव ही इश्क है, आशिक के लिए ही हुसूल का उसूल है।
माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रिं ममेदं व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य।
इस तरह के मेरी इस खौफनाक शक्ल को देखकर तुझे बेकरारी ना हो और जहालत का एहसास भी ना हो कि घबरा कर भाग खड़ा हो जा। अब तू बेखौफ और मोहब्बत भरे दिल से मेरी उसी पहले वाली शक्ल को, यानी चार बाजुओं वाली शक्ल को फिर देख। संजय उवाच।
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा।
संजय बोला, सब जगह मौजूद रहने वाले मालिक, उन वासुदेव यानी कृष्ण ने अर्जुन से इस तरह कहकर दोबारा वैसे ही अपनी शक्ल दिखाई। फिर मर्द कामिल श्री कृष्ण ने सौम्य वपुह यानी खुश होकर दहशत जदा अर्जुन को तसल्ली दी। अर्जुन उवाच।
दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः।
मालिकुल खल्क, आप इस बेइंतहा पुरसुकून इंसानी शक्ल को देखकर अब मैं खुश मिजाज हुआ, अपने असली यानी कि पहले की हालत में लौट आया हूं। अर्जुन ने कहा था, बंदा परवर, अब आप मुझे उसी चार बाजुओं वाली शक्ल का दीदार कराइए। जोग के मालिक ने दीदार कराया भी, लेकिन जब अर्जुन ने देखा तो क्या पाया? मानुषम रूपम, इंसानी शक्ल को देखा। दर हकीकत हुसूल के बाद अजीम इंसान ही चार बाजुओं वाले और बेशुमार बाजुओं वाले कहलाते हैं। दो बाजुओं वाला अजीम इंसान तो उनसियत वाले के सामने बैठा ही है, लेकिन कहीं दूसरी जगह से कोई याद करता है तो वही अजीम इंसान उस याद करने वाले से बेदार यानी रतबान होकर उसकी भी रहनुमाई करता है। बाजू काम की अलामत है, वो अंदर भी काम करते हैं और बाहर भी, यही चार बाजुओं वाली शक्ल है। उनके हाथों में नाकूस यानी शंख, चरख यानी चक्र, गुर्ज यानी गदा और कमल, बतसलसुल हकीकी मंजिल की तरफ बढ़ने का ऐलान, वसीले का आगाज, नफ्स कुशी और शफाफ बेगरज अमली सलाहियत की महज अलामत हैं। यही वजह है कि चार बाजुओं वाली शक्ल में उन्हें देखने पर भी अर्जुन ने उन्हें इंसानी शक्ल में ही पाया। चार बाजुओं वाले अजीम इंसानों के जिस्म और शक्ल से काम करने का तरीके खास का नाम है, ना कि चार हाथों वाले कोई श्री कृष्ण थे। श्री भगवान वाचा।
सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः।
मर्द कामिल श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरी ये शक्ल देखने को बेहद कमयाब है जैसा कि तूने देखी है, क्योंकि देवता भी हमेशा इस शक्ल के दीदार की ख्वाहिश रखते हैं। दर हकीकत सभी लोग फकीर यानी संत को पहचान ही नहीं पाते। काबिले एहतराम सत्संगी महाराज रोशन जमीर मुकम्मल अजीम इंसान थे, लेकिन लोग उन्हें पागल समझते रहे। चंद शरीफ उन नफ्स इंसानों को निदाए गैब हुई कि ये मुर्शिदे कामिल हैं और उन्होंने उन्हें दिल से पकड़ा, उनके मकाम को हासिल किया और अपनी नजात हासिल कर ली। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके दिल में रूहानी दौलत बेदार है, वो देवता हजरात भी हमेशा इस शक्ल के दीदार की ख्वाहिश रखते हैं। तो क्या यज्ञ सदका ख्वाह वेदों के मुताले से आप देखे जा सकते हैं? इस पर वो मर्द कामिल कहते हैं,
नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा।
न वेदों से, न रियासत से, न सदके से और न यज्ञ से मैं इस तरह देखने के लिए सहलुल हुसूल हूं जिस तरह तूने मुझे देखा है। तब क्या आपको देख पाने का कोई तरीका नहीं है? वो मर्द कामिल कहते हैं, एक तरीका है।
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप।
ऐ अजीम रियाजतकश अर्जुन, ला शरीक बंदगी के जरिए यानी सिवा मेरे किसी दूसरे देवता की याद ना करते हुए ला शरीक अकीदत से तो मैं इस तरह रूबरू दीदार के लिए, उनसुर से मुजस्सम जानने के लिए और हासिल करने के लिए भी सहलुल हुसूल हूं, यानी उसके हुसूल का वाहिद आसान जरिया ला शरीक बंदगी है। आखिर में इल्म भी ला शरीक बंदगी में तब्दील हो जाता है, जैसा कि गुज़िश्ता बाब सात में जाहिर है। वो पहले कह चुके हैं, तेरे सिवा ना कोई देख सका है ना कोई देख सकेगा। جبکہ یہاں کہتے ہیں کہ لا شریک بندگی سے نہ صرف مجھے دیکھا جا سکتا ہے بلکہ مجسم جانا اور میرے مقام کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی ارجن لا شریک عقیدت مند کا نام ہے، ایک حالت کا نام ہے، عشق ہی ارجن ہے. آخر میں جوگ کے مالک شری کرشن کہتے ہیں،
مت کرم کرم مت پرہو مد بھکت سنگ ورجت نروائر سرو بھوتیشو یہ سمامیتی پانڈو.
اے ارجن، جو انسان میرے ذریعے ہدایت کردہ عمل یعنی معینہ عمل یگ کے لیے عمل کرتا ہے، مت پرمہ میرا حامل ہو کر کرتا ہے، جو میرا لا شریک بندہ ہے، سنگ ورجتہ لیکن صحبت سے متاثر رہتے ہوئے وہ عمل پورا نہیں ہو سکتا، لہذا جو صحبت اثر سے بچ کر نویرہ سرو بھوتیشو سارے دنیاوی جانداروں میں عداوت کے احساس سے مبرہ ہے وہ مجھے حاصل کرتا ہے. تو کیا ارجن نے جنگ کی، عہد کر کے کیا، اس نے جیدرتھ وغیرہ کو مارا، اگر انہیں مارتا ہے تو معبود کا دیدار اسے میسر نہ ہو پاتا، جبکہ ارجن نے دیدار کیا ہے. اس سے ثابت ہے کہ گیتا میں ایک بھی شلوک ایسا نہیں ہے جو باہری مار کاٹ کی حمایت کرتا ہو. جو ہدایت کردہ عملی یگ کے طریقہ کار کا برتاؤ کرے گا، جو لا شریک خلوص کے ساتھ ان کے سوا کسی دوسرے کی یاد تک نہیں کرے گا، جو صحبت کے اثر سے الگ رہے گا، تو جنگ کیسی؟ جب آپ کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں تو آپ جنگ کس سے کریں گے؟ تمام دنیاوی جانداروں میں جو دشمنی اور عداوت کے احساس سے مبرہ ہے، من سے بھی کسی کو تکلیف دینے کا تخیل نہ کرے، وہی مجھے حاصل کرتا ہے. تو کیا ارجن نے جنگ کی؟ ہرگز نہیں. در حقیقت صحبت کے اثر سے الگ رہ کر جب آپ لا شریک غور و فکر میں ڈوبتے ہیں، معینہ یگ کے عمل میں لگتے ہیں، اس وقت راستہ روکنے والے حسد، عداوت، خواہش، غصہ وغیرہ ناقابل تسخیر دشمن اڑچنوں کی شکل میں سامنے ہی ہیں. ان پر قابو پانا ہی جنگ ہے. مغز سخن نشکرش. اس باب کی ابتدا میں ارجن نے کہا، بندہ نواز، آپ کے آب و تاب کو میں نے تفصیل سے سنا، جس سے میری فریفتگی ختم ہو گئی، نہ سمجھی کا اندھیرا چھٹ گیا. لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میں ہر جگہ جلوگر ہوں، اسے میں روبرو دیکھنا چاہتا ہوں. اگر میرے ذریعے دیکھنا ممکن ہے تو برائے مہربانی اسی حقیقی شکل کو دکھانے کی زحمت گوارا کیجیے. ارجن عزیز دوست تھا، لا شریک خدمت گزار تھا، لہذا جوگ کے مالک شری کرشن نے بلا کسی اختلاف کے فوراً دکھانا شروع کیا، اب میرے ہی اندر کھڑے بنات الناش یعنی سپترشی اور ان سے بھی پہلے ہونے والے ولی حضرات کو دیکھ، برہما یعنی خالق اور وشنو کو دیکھ، ہر طرف جلوہ نما میرے جلال کو دیکھ، میرے ہی جسم میں ایک جگہ پر کھڑے تو متحرک و ساکن دنیا کو دیکھ. لیکن ارجن آنکھیں ملتا ہی رہ گیا. اسی طرح جوگ کے مالک شری کرشن تین شلوکوں تک مسلسل اپنا جلوہ دکھاتے گئے، لیکن ارجن کو کچھ بھی دکھائی نہیں پڑا. ساری شوکتیں جوگ کے مالک میں اس وقت بھی تھیں، لیکن ارجن کو وہ عام آدمی جیسے ہی نظر آ رہے تھے. تب اس طرح دکھاتے دکھاتے جوگ کے مالک شری کرشن یک بیک رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ارجن इन नजरों से तू मुझे नहीं देख सकता, अपनी अक्ल से तू मेरी शनाख्त नहीं कर सकता। ले अब मैं तुझे वो नजर अता करता हूं जिससे तू मुझे देख सकेगा। बंदा नवाज तो सामने ही खड़े थे, अर्जुन ने देखा, हकीकत में देखा। देखने के बाद मामूली खामियों के लिए माफी की इल्तिजा करने लगा, जो दर हकीकत खामियां नहीं थीं। मिसाल के तौर पर, बंदा नवाज, कभी मैंने आपको कृष्ण, यादव और कभी दोस्त कह दिया था, इसके लिए आप मुझे माफ करें। श्री कृष्ण ने माफ भी किया, लेकिन अर्जुन की इल्तिजा मंजूर करके वो मौतदिल शक्ल में लौट आए, सब्र बंधाया। दर हकीकत कृष्ण कहना कसूर नहीं था, वो सियाह यानी सांवले थे ही, सफेद यानी गोरे कैसे कहलाते। यादव खानदान में पैदाश हुई ही थी, श्री कृष्ण खुद भी अपने को दोस्त मानते ही थे। दर हकीकत हर एक रियाजतकश अजीम इंसान को पहले ऐसा ही समझता है। कुछ उन्हें शक्ल सूरत से मुखातिब करते हैं, कुछ उनकी खसूसियात की मुताबिकत से उन्हें पुकारते हैं, और कुछ उन्हें अपना ही हमसर मानते हैं। उनकी हकीकी शक्ल को नहीं समझते। उनकी बईद अल कयास शक्ल को जब अर्जुन ने समझा तो पाया कि ये ना तो सियाह हैं, ना तो सफेद यानी गोरे, न किसी खानदान के हैं और न किसी के दोस्त ही हैं। उनके बराबरी का कोई है ही नहीं, तो दोस्त कैसा, बराबर कैसा। ये तो बईद अल कयास शक्ल हैं, जिसे ये खुद दिखा दें वही उन्हें देख पाता है। लिहाजा अर्जुन ने अपनी शुरुआती खामियों के लिए माफी की इल्तिजा की। सवाल उठता है कि जब कृष्ण कहना जुर्म है तो उसके नाम का विर्त कैसे किया जाए, जिसे जोग के मालिक श्री कृष्ण ने विर्त करने के लिए खुद जोर दिया, विर्त करने का जो तरीका बताया उसी तरीके से आप फिक्र और याद करें। ओमित्य काक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां मनुस्मरण। ओम लाफानी भगवान का मुत्रादिफ है। ओ अहम स ओम, वो हर जगह मौजूद है, वो इख्तदार मेरे अंदर पोशीदा है, यही है ओम का मतलब। आप इसका विर्द करें और तसव्वुर मेरा करें, शक्ल अपनी और नाम ओम का बताया। अर्जुन ने गुजारिश की के चार बाजुओं वाली शक्ल में दीदार कराइए। श्री कृष्ण उसी मोतदिल शक्ल में हो गए। अर्जुन ने कहा, बंदा नवाज, आपके इस लतीफ इंसानी शक्ल को देखकर अब मैं कुदरती हालत में हो गया। गुजारिश की थी चार बाजुओं वाली शक्ल के लिए, दिखाई इंसानी शक्ल यानी मानुषम रूपम। हकीकत में दायमी में निस्बत पाने वाला जोगी जिस्म से यहां बैठा है, बाहर दो हाथों से काम करता है और साथ ही बातिन से बेदार होकर जहां से भी जो अकीदतमंद याद करते हैं, एक साथ सभी जगह उनके दिलों में बेदार होकर मुहर्रिक की शक्ल में काम करता है। हाथ उसके काम करने की अलामत है। यही चतुर्भुज यानी चार बाजुओं वाली शक्ल है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तेरे सिवा मेरी इस शक्ल को ना कोई देख सका है और मुस्तकबिल में ना कोई देख सकेगा। तब गीता हमारे लिए बेकार है? मगर नहीं, जोग के मालिक कहते हैं, एक तरीका है जो मेरा लाशरीक बंदा है, मेरे अलावा दूसरे किसी की याद ना करके मुसलसल मेरे ही गौर व फिक्र में लगा रहने वाला है, उसकी लाशरीक बंदगी के जरिए मैं रूबरू देखने को यानी जैसा तूने देखा है उनसुर से जानने को और दाखिला पाने के लिए भी सहलुल हुसूल हूं। यानी अर्जुन लाशरीक बंदा था, बंदगी की निखरी हुई शक्ल है। उनसियत यानी अनुराग, माबूद के मुताबिक लगाव मिलहिन न रघुपति बिनु अनुरागा। उन्सियत यानी अनुराग से खाली इंसान ने ना कभी हासिल किया है न हासिल कर सकेगा। उन्सियत नहीं है तो कोई लाख जोक करे, विर्त करे, रियाजत करे या सदका दे, वो यानी माबूद नहीं मिलता। लिहाजा माबूद के मुताबिक उन्सियत या ला शरीक अकीदत निहायत जरूरी है। आखिर में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरे जरिए हिदायत करदा अमल को कर, मेरा ला शरीक बंदा होकर कर, मेरी पनाह में होकर कर, लेकिन सोहबत के असर से अलग रहकर। सोहबत के असर में अमल हो ही नहीं सकता, लिहाजा सोहबत असर इस अमल के पूरा होने में खलल पैदा करता है। जो अदावत के ख्याल से मुबर्रा है वही मुझे हासिल करता है। जब सोहबत का असर नहीं है, जहां मुझे छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं, नफरत और दुश्मनी का जहनी इरादा भी नहीं है, तो जंग कैसी? बाहरी दुनिया में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन कामयाबी फतेह करने वालों को भी नहीं मिलती। ना काबिले तस्खीर दुनियावी दुश्मन को ला ताल्लुकी के असलहे से काटकर आला तरीन माबूद में दाखिला पा जाना ही हकीकी फतेह है, जिसके पीछे शिकस्त नहीं है। इस बाब में पहले तो जोग के मालिक श्री कृष्ण ने अर्जुन को खास नजर अता की, फिर अपनी आलमी शक्ल का दीदार कराया। लिहाजा ओम तत्सदिति श्रीमद भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामेकादशोध्याय। इस तरह श्रीमद भगवद गीता की तमसील उपनिषद वो इल्म तसव्वुफ और इल्म रियाजत से मुतालिक श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकालिमे में दीदार मजाहिरे कायनात जोग यानी विश्वरूप दर्शन योग नाम का ग्यारहवां बाब मुकम्मल होता है। इति श्रीमत् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गणानंद कृते श्रीमद् भगवद गीतायाः यथार्थ गीता भाष्य विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोध्याय। इस तरह काबिले एहतराम श्री परमहंस परमानंद जी के मुकल्लिद स्वामी अड़गणानंद के जरिए लिखी श्रीमद् भगवद गीता की तशरीह यथार्थ गीता हकीकी गीता में दीदार मजाहिरे कायनात यानी विश्वरूप दर्शन योग नाम का ग्यारहवां बाब मुकम्मल हुआ। हरिओम।
Quick, choose a meal deal with McValue. The $5 McChicken meal deal, the $5 McDouble meal deal, or the new $6 Daily Double meal deal. Each with its own small fries, drink, and four-piece McNuggets.
It's actually no rush. I'm just excited for McDonald's.
For a limited time only, prices and participation may vary. Not valid for McDelivery.
Coda just made riding the bus easier than ever. Now you can pay your Coda fare by tapping your smartphone, smartwatch, or card, just like you do at the coffee shop or grocery store. Love paying with smart card? Keep doing that. Have a pass? Still works perfectly. Want to tap your phone? Now you can do that too. It's just one more way to move your way with Coda. Get moving now with Tap to Pay. Learn more at coda.com/tap.